ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से छठा स्कंद अध्याय 7 और श्लोक संख्या 22। हिंदी किताब कहाँ है? तस्या अयम् अनयस्य आसिता तस्यायम् अन्यसासिता परेभ्यो वा पराभव प्रछीणेभ्य स्वैरिभ्य संवृद्धानां च यत् सुरा। थोड़ा जोर से बोल, प्रसाद खाए हो सब लोग? आगे आ जाओ, जब हिंदी है तो पीछे क्या बैठते हो तुम? तस्यायम् अन्यस्य आसीत् तस्यायन् तस्यायम् अनयासीत् परेभ्यो यो पराभव प्रछीणेभ्य स्ववैरिभ्य संवृद्धानां च यत्सुरा तस्यायन् अनयस्यासीत् तस्यायम् अनयस्यासीत् परेभ्यो वा पराभव प्रछीणेभ्य स्ववैरिभ्य संसिद्धानां च यत्सुरा संसिद्धानां च यत्सुरा। कुछ गलत लगता है, समृद्धा नाम होना चाहिए। इंग्लिश समृद्ध है, इसमें समसिद्धा नाम लिख दिया है, ठीक है। इसमें एक हिंदी वाला बढ़ा दिया, कोई है बीबीटी वाला यहां पर? चेक करना चाहिए। ओके, मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ा कुछ, इसमें कुछ आ रहा है। तस्य अनन्यस्य आसीत् परेभ्यो वा पराभव प्रछीणेभ्य स्वैरिभ्य संवृद्धानां च यत्सुरा।
और कोई बोलो और कोई माता जी लोग तस्या उस अयम यह अनयस्य तुम्हारी कृतज्ञता तुम्हारी दुस्साहस आसित था परेभ्य अन्यों के द्वारा वा तुम सबों की पराभव पराजय प्रोक्षीणेभ्य निर्बल होते हुए भी स्वैरिभ्य तुम्हारे अपने शत्रुओं द्वारा जो पहले तुम्हारे द्वारा पराजित हुए थे समृद्धाना तुम्हारे ऐश्वर्यशाली होने से च तथा यत जो सुरा हे देवों अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। हे देवों तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो, अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार जाते। तात्पर्य असुरों से निरंतर लड़ते रहने के लिए देव या देवतागण विख्यात हैं। ऐसी लड़ाइयों में असुर की पराजय होते थे, किंतु इस बार देवता पराजित हुए थे। क्यों? जैसा कि यहां बताया गया है, इसका कारण था कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु के प्रति असम्मान का भाव ही उनके पराजय का कारण था। शास्त्रों का वचन है कि जो अपने सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उसके पुण्य कर्मों का क्षय होता है और उसकी अवनति होती है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्जिर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये पंखा था बंद कर बाहर। तो इस श्लोक को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाएंगे। मोटा मोटी इस श्लोक का सार यही है कि गुरु वर्ग का के चरणों में अपराध करने से क्या फल प्राप्त होता है। जब देवताओं के द्वारा असुरों के द्वारा देवता लोग परास्त हो चुके थे, उन लोगों का हाथ पैर टूट गया था और वे भाग करके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी जब देवताओं का यह दुर्दशा देखे जो कि असुरों के हाथों
मारे गए थे। तो ब्रह्मा जी को उन लोगों पर दया आई और ब्रह्मा जी उन लोगों को संतावना देने लगे, बतलाने लगे। पीछे श्लोक में ब्रह्मा जी कहा गया है भगवान आत्मभू रज, अज यानी ब्रह्मा जी जो सामान्य रूप से जन्म नहीं लिए हैं, इसलिए उन्हें अज कहा गया है, उन्हें आत्मभू कहा गया है, जो कि भूत भविष्य वर्तमान को तीनों को जान ले। और ब्रह्मा जी के पास जब देवता लोग आए तो ये ब्रह्मा जी पूछे भी नहीं कि क्या हो गया, ये सब क्यों हो गया। जब हम लोगों के पास कोई आता है और जब हाथ पैर टूटा होता है, सिर से खून आता है, तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कैसे हो गया, हम जानना चाहते हैं, पूछते हैं। कितने बार लोग बेहोश पड़े थे, अरे भाई क्या हो गया, अरे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाओ ना, हॉस्पिटल नहीं ले जाओ, पूछे क्या हो गया, कैसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, लोग उत्सुकता इसी को जानने में होती है। लेकिन ब्रह्मा जी यहां पर पूछे नहीं कि देवताओं तुम लोगों क्या हो गया, ये हाथ पर क्यों टूट गया, किसने तुम लोगों पर आक्रमण किया। सुखदेव गोस्वामी इस सब प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देते हैं, कहते हैं आत्मभू। ब्रह्मा जी आत्मभू हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो सब जान गए कि इंद्र ने क्या किया। और उसके बाद मतलब इंद्र ने किस प्रकार से, इंद्र आनंद उठा रहा था जब बृहस्पति जी आए, उसका इंद्र अनादर किया, वो अभी अंतर्निहित हो गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं। और बाद में इस बात को असुर लोग जान गए, असुर लोग आक्रमण किए और जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं की यह गति हुई, ये सब जान गए ब्रह्मा जी आत्मभू। अब जान करके ब्रह्मा जी संतावना दे रहे हैं। देखिए ये जो संतावना परक श्लोक है, जब भी कोई व्यथित होता है, दुखी होता है, यदि हम कुछ करने में समर्थ हैं तो जरूर करना चाहिए, यदि कुछ नहीं भी कर सकें तो कम से कम संतावना देनी चाहिए। उस संतावना जो है बहुत मायने रखता है, उस व्यक्ति को उत्साह होता है, उसकी बुद्धि विकसित होती है जो संकुचित हो जाती है भय के चलते। भय सब कुछ को पराभव कर देता है, प्राप्त कर देता है, लेकिन भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसे उत्साह मिलता है। जैसे कोई खूब बीमार हो और डॉक्टर के पास जाए तो अच्छे डॉक्टर लोग संतावना देते हैं, कोई केस में फंस गया हो वकील के पास जाए तो वकील लोग ओवर संतावना देते हैं, अरे हाँ आपके जीतिए जाएंगे, मैं हूं ना। तो ये संतावना देना चाहिए। भागवत के एक एक श्लोक जो है शिक्षा प्रद है। ब्रह्मा जी यहां पर देवताओं को संतावना देते हैं, लेकिन जो संतावना दे रहा हो, जो सबल हो, जो सक्षम हो, बड़ा एक्सपर्टली संतावना देनी चाहिए। जब छोटे लोग कुछ गलती कर देते हैं, चाहे वह शिष्य हो, चाहे वह बेटा हो, चाहे जो भी डिपेंडेंट हो, जो छोटे लोग कुछ गलती कर देते हैं, तो बड़े लोगों का धर्म क्या होना चाहिए, संतावना। लेकिन वो फ्लैटरी संतावना नहीं होनी चाहिए। फ्लैटरी का हिंदी क्या होगा, चापलूसी पूर्वक संतावना नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें कुछ गलती है तो गलती को सुधारते हुए सुनता होना, नहीं तो गलती को यदि हम पॉइंट नहीं करेंगे और केवल संतावना देंगे तो व्यक्ति अपने गलती कभी सुधार ही नहीं सकता है। पहले तो उसके गलती को पॉइंट करना चाहिए। संतावना कई एक प्रकार से दी जाती है। एक तो काया यानी शरीर से, कोई दुखी है तो उसके गले में अपना हाथ डाल लो, चाहे पीठ थपथपा दो, ये भी संतावना है। वचन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, मन से भगवान को प्रार्थना कर कर करके इत्यादि। ब्रह्मा जी यहां पर देवताओं को वचन से संतावना दे रहे हैं। जैसे अर्जुन महाभारत युद्ध में जब देखे कि किन किन लोगों से लड़ाई करनी है, मुझे नींद आ रही है पता नहीं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे, तो अर्जुन बड़े विकट परिस्थिति में थे। जैसा कि हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय में सुने हैं अर्जुन की परिस्थिति को, कि उन्हें क्या हो गया था, थूक सूखने लगा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, गांडी वहां से गिर पड़ा था, अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हे माता जी ये हेलीकॉप्टर बंद रखो ना, मुझे भी गर्मी हो रही है, बंद रखो। क्या बोल रहा था मैं, सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे तो पंखा वहां पर नहीं था, न तो एयर कंडीशन था, हाँ गंगा किनारा था, ठंडा ठंडा हवा था। क्या कह रहा था मैं, अर्जुन शोक मग्न थे, किम कर्तव्य विमूढ़ थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो कहते हैं कार्पण यदोसो उपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म समुद्धचेत यस्यान निश्चितान ब्रूहितन में शिशस्ति हम साधिमाम त्वाम प्रबन्न। हे कृष्ण मैं शरणागत हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप जो उचित समझते हैं हमें बतलाइए। भगवान संतावना देते हैं, लेकिन बड़े लोगों के कहने का शैली जो है वो भी बड़ा अच्छा है। राधा रमण महाराज एक बार, अभी लास्ट टाइम वृंदावन था तो कोई प्रसंग था, तो मैं क्लास दे रहा था तो कमेंट पूछा था, राधा रमण महाराज बता रहे थे कि बड़े लोगों का जो शैली है वो बड़ा उनके सील के अनुसार होता है, वह उनके अनुरूप होता है। छोटे लोग गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं या डांटना है बदमाश कहीं का, तो ऐसे किया ऐसे किया, गाली गलौज भी कर देंगे, एक्सीडेंट हो जाए, संतावना ही देंगे, लेकिन गाली गलौज देकर डांट पटकार करके, अभी संतावना ही होता है, जगाना होता है, कभी कभी सो जाता है, जगाना चाहिए, हरे कृष्णा तो जगाना होता है। तो इस प्रकार से, लेकिन बड़े लोग डांटते फटकारते हैं तो भी थोड़ा सलीन भाषा में, जैसे भगवान ने अर्जुन को मूर्ख कहा, लेकिन डायरेक्ट मूर्ख नहीं कहा, का अशोच्यानम शोचस्तम प्रज्ञावादांश्य भावते गतासुन अगतासुंश्च नाशंति पंडिता। भगवान केवल इतना ही कहे कि बुद्धिमान कैसा होता है, बुद्धिमान का परिभाषा, यानी कहे कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम मूर्ख हो, तो इनडायरेक्ट रूप से भगवान कहे, ये समझाने का तरीका है। बड़े लोग के मुंह से गाली नहीं निकलता है, निताई पद कमल है इधर नहीं, भक्तों के मुंह से गाली नहीं निकलती। पहले हम लोग खूब गाली देते थे, पानी पी पी कर गाली देते थे, जैसे शिशुपाल करता था, लेकिन अब गाली नहीं निकलती है, बल्कि लोग गाली देते हैं हंस लेते हैं या सुन लेते हैं, क्या बात बकवास कर रहा है। अब पहले हिंदी में गाली था, आजकल थोड़ा अंग्रेजी में गाली हो गया, यही ना अंतर इतना ही हो गया है। रास्कल, नॉनसेंस और क्या बोलते हैं, ये भी गाली है, लेकिन थोड़ा कमजोर गाली है। हिंदी वाला गाली बड़ा बेजोड़ गाली होता है। आज भी जाओ अयोध्या इत्यादि में साधु लोग गाली देते हैं, बहुत आशीर्वाद है साधुओं का, लेकिन इस्कान में हम लोगों का प्रथा अलग है। एनीवे, तो बोलने की शैली बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मा जी यहां पर धिक्कार रहे हैं देवताओं को, सब कुछ जान करके आत्मभू सब कुछ समझ गए कि इन लोगों ने क्या किया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं अहो बत, खेद प्रकट कर रहे हैं, कितनी खेद की बात है। कभी कभी आश्चर्य में भी अहोबत कहा गया, जैसे पुतना के लिए अहोबत सपचो गरी यान यजी हुआ अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, नहीं अहोबत सपचो गरी यान यदि वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सुनार्ज से ना चुड़ियान गिड़ंती थे, मतलब आश्चर्य के लिए अहोबत आश्चर्य। तो अहोबत कितनी खेद की बात है, आश्चर्य ब्रह्मा जी कर रहे हैं। कहते हैं सुर श्रेष्ठा, आप लोग ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, इंद्र को डायरेक्टली संबोधित कर रहे हैं। सुर श्रेष्ठा, आप देवताओं के मुखिया हैं। इंद्र अपराध करने में बड़े श्रेष्ठ थे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, इग्नोर कर कर करके किसी को अपराध इंद्र करते थे, जैसे यहां पर बृहस्पति जी को वाणी के द्वारा अपराध कर देते थे, और उतना ही नहीं बनता गला भी काटते थे इंद्र। अपराध करने में इंद्र एक्सपर्ट थे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वाणी के द्वारा इंद्र अपराध किए, सॉरी मन से इग्नोर कर करके, देखते हुए भी ना देखे, पश्यम अपि न पश्यति, देख करके भी नहीं देखे। ऐसे ही कथा है कि वाणी से कैसे इंद्र अपराध किए। एक समय की बात है, दधीचि ऋषि जो महान वैष्णवी विद्या में श्रेष्ठ हैं, तो अश्विनी कुमार लोग जो देवताओं के वैद्य हैं, ये लोग दधीचि के पास गए वैष्णवी विद्या प्राप्त करने के लिए, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उस समय दधीचि ऋषि किसी यज्ञ कार्य में लगे हुए थे, तो कहे भी मैं यज्ञ कर रहा हूं, जब यज्ञ संपन्न होगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये ज्ञान दूंगा। किसी ना किसी प्रकार से सीआईडी डिपार्टमेंट बड़ा काम कर रहा था, इंद्र को इसके बात का मालूम हो गया, तो इंद्र आए दधीचि के पास, और देखिए कैसे वाणी से अपमान कर रहे हैं इंद्र। दधीचि से कहते हैं देखिए ये लोग वैद्य हैं, इनका काम है दवा दारू करना, ये भक्ति नहीं कर सकते हैं, भक्ति के पात्र नहीं है, तो वैद्य लोग हैं, आप इन लोगों को यह ज्ञान मत दीजिएगा। तो दधीचि ने कहा कि मैं तो वचन दे चुका हूं कि इन लोगों को ज्ञान दूंगा। तो इंद्र कहता है कि मैं भी कह रहा हूं, आप इन लोगों को यह ज्ञान मत दीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए क्या होगा, आपका गला मैं काट डालूंगा। सीधे थ्रेटनिंग कर दिया कि मैं आपका गला काट डालूंगा। बाद में अश्विनी कुमार लोग आए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो दधीचि जी पूरा बात बतला दिए कि क्या क्या हुआ है और कैसे हमको इंद्र थ्रेट कर गया है, थ्रेटनिंग देकर गया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसका चिंता आप मत कीजिए, अरे वो काटे उससे पहले हम काट लेते हैं आपका गला है। तो कहे कि गुरुदेव ऐसा करते हैं कि आपका गला काटकर हम सुरक्षित रख देते हैं, और एक घोड़ा का वो गला काट कर लाए और कहे इस गला को डाल देते हैं और आप इसी मुख से ज्ञान दीजिए, क्योंकि वो राज वैद्य थे, बड़े एक्सपर्ट थे, ऑपरेशन करने में फर्स्ट क्लास थे, नरसिंह देव के बाद सेकंड ओनली नौकरी था ऑपरेशन करने में। तो वे लोग घोड़े का मुख रख दिए दधीचि के धड़ पर, तो इसीलिए भागवत ज्ञान को अश्वशिरा विद्या भी कहा जाता है। अश्व मतलब घोड़ा और शिर मतलब सिर, घोड़े के मुख से जो ज्ञान दिए दधीचि। और बाद में इंद्र आए तो देखे तो ज्ञान दे रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा आ गया और धड़ाक काट दिए वो सिर, तो घोड़ा का सिर काट दिए, तो अश्वनी कुमार लोग उनका जो ओरिजिनल सिर था ला करके लगा दिए, तो दधीचि जी बच गए। यानी आगे लाग पढ़ेंगे। तो मैं कह रहा था कि दधीचि इंद्र वाणी से भी अपराध करते थे, और अभी आगे पढ़ेंगे विश्वरूप का गला तुरंत काट दिए। दधीचि का था काटे थे, पता नहीं इंद्र का कैरेक्टर कैसा है, इंद्र को क्या कहते हैं जिसके शरीर में आंख आंख है, सत्र सहस्राक्ष, सत्र चक्षु सहस्राक्ष, पहले लिंग था राइट उनके शरीर में, इतना कामी इंद्र थे, तो बाद में उनको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, चलो आंख रहेगा। तो इंद्र लेकिन काम अच्छा करते हैं, इसीलिए भगवान थोड़ा माफ कर देते हैं, चलो काम करता है, कभी कभी गलती भी करता है। एनीवे, तो यहां पर इंद्र को डायरेक्टली, क्योंकि इंद्र जो हैं वे उनके मुखिया थे, और अपमान हुआ था, अन्य देवता लोग भी थे, सब खड़ा हो सकते थे, लेकिन इंद्र श्रेष्ठ थे। हालांकि सबने देखा कि बृहस्पति जी आए, ऐसा बात नहीं कोई देखा नहीं, लेकिन वो खड़ा भी नहीं हो सकते क्योंकि इंद्र खड़ा नहीं हुए। नियम यही है कि जब सभा का सभासद खड़ा हो जाए तो सब लोग खड़ा हो जाएं, सभासद बैठे सब लोग बैठे, ये अपनी परंपरा है, ये एडिकेट है। तो इंद्र खड़ा नहीं हुए इसलिए कोई खड़ा नहीं हुआ, तो अंततः यह जो अपराध था वह इंद्र ने किया, अन्य लोग उसमें भाग लिए लेकिन इंद्र उसके मुखिया थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अहो बतो सुरश्रेष्ठा, हे देवराज इंद्र, देवताओं के साथ जाय जैसे गौरनिताय राधारस व्याज तनु समझा, कहते हैं ही अभद्र व कृतम महत्, जो तुम लोग एक काम किए हो जिसके चलते तुम लोगों की गति हुई है, कहते हैं ही अभद्र, ही मतलब निश्चय ही, और अभद्र मतलब अमंगल, यह सराहनीय कार्य नहीं है, कोई ग्रेट काम तुम लोग नहीं किए हो, जो बृहस्पति का तुम लोगों तिरस्कार किया अपमान किया, ये अमंगल करने वाला कार्य है, और ये दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों का अमंगल हुआ, हाथ पे टूटा हुआ है, इसका कारण यही है कि तुमने अमंगल कार्य किया है, कृतम महत महान पाप है, ये अन्याय है। अब बृहस्पति जी के विषय में बताया कि बृहस्पति जी बहुत महान हैं, वे देव गुरु हैं, उनके बड़े धुरंधर शिष्य हैं, जैसे आजकल इस्कॉन में कोई गुरु होता है तो उसके कोई पीएचडी या एमबीबीएस या एमटेक बीटेक कोई से आ रहे, अरे उनकी तो चले इतने बड़े बड़े हैं, एमटेक हैं बीटेक हैं पीएचडी हैं इत्यादि लोग बात करते हैं। बृहस्पति जी पहले एमटेक बीटेक और पीएचडी बात नहीं होता था, पहले कौन उनके शिष्य हैं, उद्धव उनके शिष्य हैं बृहस्पति के, जो कृष्ण के चचेरे भाई हैं, उसके बाद में पितामह भीष्म उनके शिष्य हैं जो एक महाजन है, परशुराम जी उनके शिष्य हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत विख्यात लोग उनके शिष्य हैं, ये उन समय के पीएचडी और एमबीबीएस ये लोग थे। उद्धव जी, ए भाई जगो, क्यों परद रहता है रात को। तो यहां करें ये बृहस्पति जी कैसे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, कहते हैं ब्रह्मिष्टम, ये ब्रह्मर्षि हैं, ये कोई सामान्य नहीं है बृहस्पति जी, बड़े कम ही लोग ब्रह्मर्षि हैं, बृहस्पति जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र भी है, बाद में हुए हैं, खूब लड़ाई हुआ उनका वशिष्ठ जी का ब्रह्मर्षि बनने के लिए। तो ये टाइटल ब्रह्मर्षि का कोई आसान टाइटल नहीं है, सबसे बहुत बड़ा टाइटल है। तो यहां पर कहा गया है ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मर्षि हैं, भगवान में उनकी निष्ठा है, यानी भगवान को जानने वाले हैं, असली ब्राह्मण है। पहले ब्राह्मण और वैष्णव में अंतर नहीं था, आजकल बताना पड़ता है थोड़ा कि वैष्णव है। ब्राह्मण ऐसा पहले नहीं था, केवल जात से कोई ब्राह्मण था, ब्राह्मण मतलब वैष्णव, ब्राह्मण जो वैष्णव है उसमें ऑलरेडी ब्राह्मण का गुण है, कुछ सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। ये 100 रुपया का नोट है, 50 रुपया ऑटोमेटिकली है। तो ऐसे ही वैष्णव मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुण है, और जो ब्राह्मण था वो वैष्णव था, यही बात था। तो बृहस्पति जी वैष्णव थे, भले उनका तारतम्य अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरी है। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले। जैसे उदाहरण के लिए कोई कहे कि मोदी जी कौन है, आजकल तो वही बात चल रहा है ना, है? सब लोग जानते हैं मोदी जी कौन है, कौन मोदी जी, कुर्मावतार है, चाय वाला है, बोलते चाय वाला नहीं, अब मत बोलना, पहले ठीक था, इलेक्शन से पहले चाय वाला बोलता था उनको, तुमको माला मिलती, अब मिलोगे तो डांट खाओगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सब लोग जानते हैं, ये भी एक जानकारी हो, ये भी एक ज्ञान हुआ जानना। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे फोन पर बात कर सकते हैं, वो भी जानना हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ डेली रहते हैं, वो भी जानना हुआ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके पसंद को जानते हैं, मैं पेपर में पढ़ता हूं, टेलर एक है, वो जानता है कौन कपड़ा कब पहनना चाहिए, तो भी जानकार है मोदी जी का, जानता है बेचारा। उनका रसोईया है, वो जानता है उनको एक प्रकार से। वैसे ही वैसे कोई ऐसा भी होगा जो उनके मन को बात को जाने है? तो जानने वाले कई प्रकार के हुए। तो जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले कई प्रकार के होते हैं। जो संबंध से भी देखा जाए, हम लोग कहते हैं भगवान से 5 प्रकार का संबंध है, शांत दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य, इसी में तारतम्य है। जो माधुर्य भाव वाला है वो बिल्कुल निकटतम भाव वाला है, बिल्कुल नजदीक वाला है। तो वैसे ही भगवान को जानने में भी बृहद भागवतामृत में वर्णन किया गया है, भगवान शिव के विषय में, ब्रह्मा जी के विषय में, पांडवों के विषय में, हनुमान के विषय में, और अंततः गोपियों का जो है उनका वर्णन किया गया कि वे लोग यथावत कृष्ण को जानते हैं। सब जानते हैं लेकिन गोपियां श्रेष्ठ हैं। वैसे ही वशिष्ठ भी या बृहस्पति जी भगवान को जानते हैं, ब्रह्मनिष्ठम ब्राह्मणम, ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण हैं, और उतना ही नहीं, तीसरा कहते हैं दांतम, वे दांत हैं, यानी सरल स्वभाव के हैं, उनकी इंद्रियां उनके बस में हैं। यदि वहां आ भी वहां पर आ गए, तुम लोग सम्मान कर लिए होते तो कोई खराब नहीं होता। तो कोई कह सकता है जब वो दांत हैं, इंद्रियां उनके बस में है, मन इत्यादि, तो फिर मान अपमान के फेरे में क्यों पड़ गए, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आज देवताओं का ये गति हुआ है, देवताओं का जो ये परिस्थिति हुआ है, इसलिए छोड़कर चले गए, दुखी हो गए, तो उन्हें मान नहीं मिला, इसलिए नहीं, बल्कि वे इंद्र आदि को एक शिक्षा देना चाहते थे कि वैष्णव का, ब्राह्मण का कैसे सम्मान करना चाहिए। वैष्णव लोग, ब्राह्मण लोग कभी कभी नहीं चाहते हुए ऐसा कार्य करते हैं, लोक शिक्षा देने के, लोक शिक्षा अर्थ आयाम, लोक शिक्षा के लिए, क्योंकि इंद्र के लिए या शिष्य के लिए या डिपेंडेंट के लिए ये जरूरी है कि गुरु को, पिता को या बड़े को सम्मान दे। लेकिन इंद्र उन नहीं कर रहे थे। तो कहते हैं कि यही कारण था, कारण बतला दिए कि किस लिए तुम लोग आज पराजित हुए हो। अब यहां पर खुल करके कह रहे हैं कि तुम लोगों का जो पराजय का कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि तुम लोगों का बृहस्पति के प्रति दुराचरण। अनयस्य कृतज्ञता, इस प्रकार का व्यवहार जो तुम लोगों ने किया, बृहस्पति जी नहीं है, तुम लोग सब प्रकार से समर्थ हो। कहते हैं समृद्धानाम, समृद्धशाली होकर के भी धन बल सेना सब कुछ रहते हुए भी गुरु के न रहने से आज तुम लोग प्राप्त हुए। समृद्धानाम, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक राजा के लिए सात वस्तुओं की आवश्यकता होती है। स्वामी अमात्यौ जनपद दृग द्रविण संचया दंडो मित्रम च तस्सहिता सप्तम प्रकृतयो मतः। कहते हैं स्वामी, स्वामी मतलब गुरु श्रेष्ठ। अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री। जनपदा राज्य, याद रखना है कोई राजा हो तो राजा को इन सात वस्तुओं की आवश्यकता होती है सम्यक रूप से राज चलाने के लिए। उसमें से प्रथम है गुरु, दूसरा है मंत्री, तीसरा है राज्य, चौथा है दुर्ग बाउंड्री लाइन टेरिटरी दुर्ग, द्रविण संचया भरा परिपूर्ण कोष खजाना, दंडो राजा के पास दंड देने का अधिकार, मित्रम कुछ सलाहकार होने चाहिए, मित्र होने चाहिए। तो ये जो सात हैं इससे राज्य का कार्य भली भांति चलता है। अब यहां पर बृहस्पति जी चले गए थे, जो प्रथम अंग है वो चले गए थे। तो सब कुछ होने के बावजूद भी, समृद्धानाम, सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो लोग इस दुख के प्रभाव में, दुख में डूब और उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं। परेभ्यो व पराभव, तुम लोगों का आज पराभव जो हुआ है, परेभ्यो अन्यों के द्वारा यानी असुरों के द्वारा, प्रक्षिणेभ्यो तुम लोगों का अंग भंग हो चुका है, हाथ पैर कट गया है, टूट गया है, स्वबैरीभ्य तुम लोगों के बैरियों के द्वारा, जिनको तुम लोग कई एक बार प्राप्त कर चुके हो, और समृद्धानाम कहकर के कहकर के सब प्रकार से तुम लोग श्रेष्ठ हो, सब कुछ तुम लोगों के पास है। जब भी लड़ाई हुई उन लड़ाई में तुम लोगों ने अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को यानी असुरों को प्रायः तुम लोग हराए। लेकिन आज तुम लोग पराजित हुए हो, तुम लोगों की दुर्गति हुई है, प्रक्षिणे व्य छिन्न भिन्न हो चुके हो, प्रकृष्ट रूपेण अचेत रहते जो छिन्न भुवन हुआ है, उसका एकमात्र कारण है तस्य अयम अनयस्य आसित। अनयस्य तुम्हारी कृतज्ञता, तुम्हारी धृष्टता, तुम्हारा
अज्ञानता, तुम्हारी मूर्खता, यही कारण है। अन्यत्र कहा गया है, मैं लास्ट टाइम में इसको बताया था, ब्राह्मणम कुल संपन्नम भक्त विष्णु महात्मना अयात विक्षना उतिष्ठ सदुख परिभूयते। यदि कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल संपन्न, ब्राह्मण कुल में कोई जन्म लिया हो और ब्राह्मणिकल कल्चर से सब प्रकार से संपन्न हो और भक्त विष्णु और भगवान विष्णु का कोई भक्त हो, महात्मा ना महात्मा हो ऐसे को, अयातम विक्षम न उतिष्ठ, ये लोग आ रहे हैं, कोई ब्राह्मण हो या श्रेष्ठ वैष्णव हो, सीनियर वैष्णव हो, आ रहे हैं, उनको देख करके जब कोई खड़ा नहीं होता है, न उतिष्ठ, यदि बैठा है तो खड़ा होना चाहिए। पहले ईमान अपमान के लिए वाणी बोलने की जरूरत नहीं थी, आचरण से लोग जान जाते थे। जैसे आजकल भी आप यदि जाओ किसी से मिलने के लिए और वो व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है, इधर उधर कुछ कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको इग्नोर कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है, किसी को बुलाए ये काम करना है, ये काम करना है, आपके साथ में बुलाया है लेकिन आपको इग्नोर कर रहा है, समझ जाए आपको इग्नोर कर रहा है और वहां पर नहीं रुकना चाहिए। तो यहां पर न उत्तिष्ठ, खड़ा न होना मतलब इग्नोर करना, और जो ऐसा करता है स वह व्यक्ति दुखई परिभूयते, वो दुख के दुख में सराबोर हो जाता है, परिभूयते सराबोर हो जाता है, दुख में डूबने उतराने लगता है। तो हे देवताओं, इन देवताओं का भी यही गति हुआ है, इसीलिए वैष्णव कल्चर को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, वैष्णव कल्चर सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णव कल्चर सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोग भी देखते हैं कि जब हमारे कोई सीनियर वैष्णव आते हैं तो हम लोग उठते हैं, प्रणाम करते हैं, वंचाकल्पतृभ्यश्च अग्रवासिन्धेयश्च पत्तानां पावनो विश्वमेरम, समय परिस्थिति के अनुसार प्रणाम करते हैं। एक बार तमल कृष्ण महाराज आए और उनके शिष्य थे वेदव्यास प्रभु, जो गोविंदा रेस्टोरेंट चला रहे थे। उस समय संडे का आई थिंक दिन था और मैं महाराज के साथ में ही था, तो गोविंदा में गए और बहुत भीड़ था, तो वेदव्यास प्रभु महाराज को देखे और भाग करके आए और महाराज को सष्टांग प्रणाम कर रहे थे, उनके शिष्य थे, प्रणाम कर सष्टांग। तो महाराज उनको कहे कि जब इतनी पब्लिक है, जब यहां पर रेस्टोरेंट चल रहा है, तो यहां कोई जरूरत नहीं है सष्टांग प्रणाम करने का, मेन चीज है सम्मान देने का। आप बैठे थे खड़ा होकर के और हाथ जोड़कर हरे कृष्ण बोलेंगे तो वो भी उतना ही बराबर है जितना कि सष्टांग प्रणाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। मेन चीज है सम्मान करना, मेन चीज सम्मान करना। तो यह बात वैष्णवों को समझना चाहिए, जितने भी जूनियर हैं सीनियर हैं सबको समझना चाहिए कि कैसे वैष्णवों का सम्मान करें। वैष्णवों के सम्मान से हमारी भक्ति की वृद्धि होती है और वैष्णवों के अपमान से, प्रभुपाद जी यहां पर तात्पर्य में कहते हैं, शास्त्रों का वचन है कि जो अपने सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करता है उसकी आयु क्षीण होती है। मैं श्लोक ढूंढ रहा था, मिल नहीं पाया कहीं पर, यह श्लोक है, उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पुण्य कार्यों का क्षय होता है और उसकी अनवत्ति होती है। बलदेव तू जानता है श्लोक, मैं भूल रहा हूं, श्लोक कहीं है, तमाल जी बताइए, महत का अपमान करने से, महत व्यक्ति का अपमान करने से क्या क्या होता है? आयु क्षीण हो जाता है, सब पुण्य क्षय होता है और उसका विनाश होता है। बड़ा सीरियस मैटर है। तो हम लोग वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग वैष्णव नहीं हैं, बनने का प्रयास करते हैं, मात्र लाल कपड़ा पहनने और दीक्षा लेने से कोई डिवोटी नहीं हो गया, वैष्णव नहीं हो गया। ये तो केवल एडमिशन हुआ है, अभी पढ़ाई पढ़ना है ना, अभी एडमिशन हुआ है। तो यदि पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल रास्ता बाहर का देखना पड़ेगा। इसलिए बड़े सावधानी से जो प्रभुपाद जी दिए हैं, जो गुरुवर्ग देते हैं, जो ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई है, इस ट्रेनिंग का सदुपयोग करना चाहिए। पहले समय था, पता नहीं, ओल्ड इज गोल्ड, हम पुराने दिनों को याद करते हैं कि जब भी पहले कोई सीनियर वैष्णव आए तो सब लोग झुककर प्रणाम करते थे, कहीं पर भी वहां वहां प्रणाम करते थे। उतना ही नहीं, अपने रूममेट लोग भी जो उठते थे तो उठने की तुरंत बाद सब वांछा कलत्र भजन करते थे। टेंपल कमांडर घंटी बजाता था, सब उठते थे, उसके बाद सब लोग वांछा कलत्र करते थे। ये हमारी पद्धति थी, ये हमारी प्रणाली थी, वैष्णव को प्रणाम करना, वैष्णव को आदर देना। उसके बाद सब प्रकार से जैसे प्रसाद सेवन हुआ तो हमेशा जो सीनियर वैष्णव, प्रभु जी आप लीजिए, बाद में हम लेंगे, आजकल तो आप पीछे रहिए, मुझको पलायन दीजिए। वैसे ही मंगला आरती श्रृंगार दर्शन में पहले जो सीनियर वैष्णव थे, आ रहे थे, सामने रहते थे, उनकी ढाई तवा पाछे पाछे पीछे रहते थे। आजकल मैं देखता हूं कि कुछ भक्त लोगों को मंगला आरती में बड़ी जल्दी भूख लग जाती है, वो शंख बजा फट 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 भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत जल्दी भागते हैं प्रणाम कर, पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा रुक जाओ और लगा रहे हैं। और श्रृंगार दर्शन हो रही है और वैष्णव लोग खड़े हैं, बुम 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 बुम, अरे थोड़ा रुको, सब चाक में जाए, बाद में जाओ, क्या जल्दीबाजी है, क्या जल्दीबाजी है। जिस काम में जल्दीबाजी है वो तो नहीं करते हैं, जल्दीबाजी है कि हमसे कोई अपराध ना होने पावे। यह देखें, मैं मुकुंद माधव प्रभु से बोला था भाई इसको अनाउंस कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मैं कर देता हूं अनाउंस कि अपना वैष्णव एडिकेट नहीं भूलना चाहिए। वैष्णव एडिकेट यह है कि अब सीनियर लोग हैं तो पहले हम उनको चांस दें, पहले वे जाएं। हम लोग, मैं देखता हूं प्रणाम भक्त लोग करते हैं तो सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जाते हैं, नमो महावदान्याय। राधारास बिहारी को प्रणाम करते हैं तो हे कृष्ण करुणा सिंधु, अरे कैसे जानते हो कृष्ण करुणा सिंधु हैं, क्या आपका परिचय है कृष्ण से। गुरु को भी सिर पर रखते हैं, गुरु के ऊपर भी, कम से कम प्रभुपाद जी आचार्य हैं, हम लोगों को प्रणाम करते समय पहले चाहिए नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादे। प्रभुपाद जी को यदि हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे तो चैतन्य महाप्रभु, हमारे शुद्ध भक्त कौन बुला रहा है देखेंगे, कृष्ण यार कौन बुला रहा है। यदि कृष्ण को है कृष्ण तो बहुत लोग हरे कृष्ण बोलने वाले हैं, कृष्ण कभी नहीं देखेंगे। तो पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोले, उसके बाद और कोई प्रणाम मंत्र बोले, ये हम लोगों को पहले सिखाया था, हम लोगों की ट्रेनिंग थी, हमने सिखाया इस बात को। पता नहीं आज के भक्त डायरेक्टर सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो ना, ये सीखना चाहिए। वैसे ही प्रणाम जब करें तो अपना एडिकेट नहीं भूलना चाहिए। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए, एडिकेट होना चाहिए, तब तब वैष्णवता है, और नहीं तो फिर वही इंद्र वाला काम करेंगे, फिर पराभव सब दुख परिभूयते, हम पराभव परिभूयते,
हम प्राप्त हो जाएंगे अपने परशिव में, जिस काम के लिए हम यहां पर आए हुए हैं उसको हम सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे।
और इसी प्रकार से वैष्णव अनादर से वैष्णव अपराध होता है। अनादर भी अपराध है, अनादर अपराध है, लेकिन छोटा अपराध है। लेकिन वैसे ही अनादर करते करते फैमिलिटी आ जाती है, फिर जूनियर वैष्णव लोग सीनियरों का नाम लेकर पुकारते हैं। पहले नाम लेकर के बड़े कम पुकारते हैं, प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी। अब तो प्रभु जी भी खत्म हो गया डायरेक्टली, असम कृष्णा राज के कहना है डायरेक्टली। जूनियर लोग भी ये नहीं होना चाहिए। हमारा वैष्णव कल्चर बहुत हाई है, बहुत हाई है। ये हमारा धरोहर है और इस धरोहर को हम लोगों को अपना कर रखना चाहिए, नहीं तो जब अपराध होना शुरू हो जाएगा, भगवान के चरणों में यदि कोई अपराध करता है तो भगवान माफ कर देते हैं। हरि पदे अपराध तार हरि नाम, और तुआ पदे अपराध ना ही कोनो त्राण। यदि भगवान के चरणों में कोई अपराध कर दिया तो भगवान का नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, और तुआ पदे अपराध ना ही कोनो त्राण। और यदि वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया तो कोई नास्ते व गतिरन्यथा, कोई गति नहीं है। भागवतम के नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा है, दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किए, भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, भागते गए ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कोई रक्षा नहीं कर पाए, यहां तक विष्णु के पास गए। और भगवान विष्णु भी असहाय भाव से कहते थे, मैं क्या कर सकता हूं, आप पर दया आ रही है दुर्वासा जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, ये सुदर्शन चक्र आज मेरे बस में नहीं है, मेरा होकर भी मेरे बस में नहीं है। और वहां पर भगवान दुर्वासा जी को बतलाए हैं कि मैं कैसे वैष्णवों को छोड़ सकता हूं, जिन लोगों ने सब कुछ छोड़ करके मेरे लिए, जिन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं। यदि आप शांति चाहते हैं तो जाइए अम्बरीश महाराज के पास। वैष्णव लोग भाई नेचर बड़े दयालु होते हैं, अपराध यदि वो भी जाए जाकर तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयो च, कृपा के आगार हैं, कृपा के सागर हैं। पतितानाम पावने व्यो वैष्णव व्यो नमो नमः। अपराध हो जाए अपराध का क्षमा याचन करना चाहिए, तब ही एकमात्र कल्याण हो सकता है। तो ये जो श्लोक है ये बड़ा सारगर्भित श्लोक है। इस श्लोक का अदरवाइज मीनिंग नहीं निकालना चाहिए कि नहीं नहीं तो गुरु के लिए कहा गया है। भक्त लोग उसमें देखते हैं फाड़ करके कि किसके लिए कहा गया है। गुरु सब है, गुरुन वैष्णवांश्च, सब वैष्णव। यदि एक दिन पहले भी, कितने लोग कहते हैं अरे वो तो हम दो महीना पहले ज्वाइन किया उससे क्या हो गया। अरे जोड़ुआ बेटा जब जन्म लेते हैं जो बच्चे साथ में जन्म लेते हैं, जो पहले आता है बड़ा भाई कहलाता है, साथ में जन्म लिए हैं लेकिन पहले जो आया वो बड़ा भाई कहलाया, कितना सेकंड का अंतर होता होगा। बहुत कम समय का अंतर, फिर भी बड़ा भाई है। और यहां तो 6 महीना पहले का डिवोटी बनाया तो क्या हुआ, 6 महीना तक तो बड़ा बन गया है, ऐसा लोचते हैं। अहंकार विमुद्धात्मा
करता हम इति मन्यते। ये मिथ्या अहंकार है जो हम लोगों को डुबो डालेगा। मिथ्या अहंकार जो है कहा जाता है कि जो वैष्णव के रीति रिवाज को पालन करता है वह वैष्णव लोहे के जहाज के समान है। जहाज लोहे का बना होता है, कितना भारी होता है लेकिन फिर भी पानी में तैरता रहता है। लेकिन जो वैष्णव अपराध करता है वो सुई के समान होता है। सुई भी लोहे का है और जहाज भी लोहे का है। सुई को पानी में डालकर बुम डूब जाएगा लेकिन लोहे का बड़ा जहाज तैरता रहेगा। तो दोनों वैष्णव हैं, एक एडिकेट पालन करता है वो जहाज के समान है और जो एडिकेट पालन नहीं करता है अपराध करता है वो सुई के गोल सुई के समान है, लोहे के सुई या लोहे का गोला जो कि बम डुबाता है। अन्यत्र कहीं है कि जो वैष्णव अपराध करते हैं वे लोग अपने गले में वजनदार पत्थर बांध करके तैर रहे हैं, है ना, तैर रहे हैं लेकिन वजनदार पत्थर है, उनको लो डूबेगा, डुबा देगा वो आज नहीं तो कल। तो जो लोग वैष्णव अपराध करते हैं वो जरूर डूबेंगे आज नहीं तो कल। हम लोग देखे हैं यहीं पर कितने भगत बने, कितने लोग यहां पर आए, कहां गए सब लोग। आज इतना साल हो गया, मंदिर का उद्घाटन हुआ 1978 में, हैं असीम कितने भक्त लोगों ने, कहां गए सब। तो हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वैष्णव अपराध ना हो। जो मैनेजमेंट में है उसे अपराध होती रहती है, लेकिन याद रखना आप लोग कि जो मैनेजमेंट में है उसका रक्षा भगवान डायरेक्टली करते हैं। जैसे इंद्र को यहां पर ना गलती करते हैं भगवान पोषण कर लेते हैं, क्योंकि उनके बिहाफ में कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है, कभी कभी डांटना पड़ता है इत्यादि। लेकिन जो मैनेजमेंट में नहीं है उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए, सब दोनों को रहना चाहिए। जैसे बात नहीं कल मान बस बस भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा बात नहीं है, रक्षा सब भगवान करेंगे। लेकिन यदि मान लो कोई अपराध हो भी गया जो मैनेजमेंट में है, किसी को डांट दिया, नॉनसेंस, तो ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है भगवान संभाल लेंगे उसको क्योंकि मंदिर के लिए कर रहा है। लेकिन जो नहीं है अलग स्तर दोनों को रहना चाहिए। तो वो अपने गले में भारी पत्थर बांध करके तैर रहा है, आज नहीं तो कल जरूर डूबेगा। सो यह जो श्लोक है, इस श्लोक में क्लियरली बात बताया गया है। ब्रह्मा जी जो एक महायन है वे बतला रहे हैं, कह रहे हैं कि पराभव का कारण क्या है, समृद्ध हैं सब कुछ होने के बावजूद भी अपने बैरियों के द्वारा वे पराभव हो गए, छीण बिछीण हो गए, और उनका एकमात्र कारण है वैष्णव अपराध, अनयस्य कृतज्ञता, धृष्टता, अपमान। तो सब कुछ होने के बाद भी यदि एडिकेट ही नहीं सीखेंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। पराभव, हम लोग यूजलेसली अपना समय बर्बाद करेंगे, कोई भी हो। प्रभुपाद जी सम्माननीय अपने बाप मां भी, कभी कभी भक्त में जाते हैं ओ माई मदर फादर दे आर डीमन, ऐसा नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट डीमन, ये फनाटिसिज्म है। बाहर कर्मी लोग हैं, बड़ा व्यक्ति होता है एज में हुआ सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, सम्मान करने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है। जो ही सम्मान करेंगे तुरंत एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, बड़े लोग भी उसका सम्मान करेंगे। सम्मान करने से सम्मान मिलता है। अंग्रेजी में कहावत है डू नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, कमांड रिस्पेक्ट। सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान सम्मान देने से मिलता है।
कमांड रिस्पेक्ट,
कमांडिंग करना चाहिए ना कि डिमांडिंग करें, डिमांडिंग नहीं। तो रिस्पेक्ट प्राप्त करना है तो रिस्पेक्ट देना सीखें, भगवान को रिस्पेक्ट दें, गुरु को रिस्पेक्ट दें, वैष्णव को रिस्पेक्ट दें, यहां तक कि चिट्टी तक को रिस्पेक्ट दें। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से मृगारी कथा, कैसे मृगारी एक चिट्टी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था। ये है वैष्णवता, नॉट टू हर्ट एनीबॉडी, ये है वैष्णवता। एनीवे वी कैन टॉक मोर, बट घड़ी सामने लगा हुआ है, सो आई विल स्टॉप हियर। एनी कॉमेंट और क्वेश्चन? यस, माइक कहां है? माइक दो। ए वेर इज इन हुच रूम यू आर विथ हूम?
Hare Krishna. Devakananda Prabhu, you just said regarding this commanding respect and demanding respect. So when you see sometimes like devotees newly coming and living in the temple, and then since you cannot command the respect or something, how do you instruct them that sometimes to kind of greet or offer respect or, you know?
Instructing is one thing. Instructing is one thing and demanding is other thing. In instruction, you want to see his benefit. And in demanding, you want to see your respect. The difference. Is clear? I mean, in instruction, one had to be very exemplary. Yada yada acharati shrestha. Then that instruction has meaning. Otherwise, go on simply talking has no meaning.
Hare Krishna. जैसे बोलते हैं कि वैष्णव अपराध होता है, लेकिन कभी कभी कोई भक्त लोग जैसे कभी वैष्णव अपराध नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, कभी किसका अभी आता है ब्रह्मचारी बनने के लिए, इच्छा करता है तो कभी कभी वो छोड़ करके भाग जाता है शादी करने के चक्कर में, कुछ चक्कर में, तो समझो वैष्णव से झगड़ा नहीं किया, कुछ अपराध नहीं हुआ, तो फिर फॉल डाउन होने का कारण क्या है, कैसा है?
अपराध कई एक प्रकार के होते हैं, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। मन से भी कभी कभी अपराध हो जाता है, और ऐसे भी ये कुछ कर्म है पहले का जिसके चलते वो नहीं कर पाता है। तो बिना अपराध के भगवान क्यों किसी को भगाएंगे अपने शरण से? जरूर कुछ गलती होती है। सरकार को कोई शौक नहीं है लोगों को जेल में ले जाने का। यदि कोई क्रिमिनल है तो सरकार जेल से छोड़ती भी नहीं है। यदि कोई क्रिमिनल नहीं है तो अब पुस्तक वितरण करने जाना हो तभी ठप्पा मारेंगे, क्या क्या परमिशन लो, कितना करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। तो भगवान भक्ति राज्य भक्ति देवी क्यों किसी को कहे कि तुम जाओ यहां से? अपराध जरूर किया है, भले दिखाई नहीं पड़ता हो, सामने ना दिखा, प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर किया है। बिना अपराध के बाहर नहीं आता। अपराध लास्ट अपराध करते अपराध, राज मतलब प्रेम और अप मतलब नहीं, यहां प्रेम ना हो, प्रेम खत्म हो जाता है। जब प्रेम नहीं है तो कितना दिन रहेगा, जब आनंद रहा तब ना रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु आनंद आने का सरल कारण दिए हैं, नाचना और गाना। वैष्णवों के आनंद का कारण है नाचना और गाना। मैं असीम प्रभु से यही बात कर रहा था कि राधे क्या करना है प्रभु, देखा गुरु पूजा गा रहा, इसलिए मैं गुरु पूजा गाना छोड़िए दिया हूं। देखा ये गा रहे थे, दो भगत लोग यहां पर हैं, सब लोग पता नहीं कहां नाच गा रहे हैं। अरे यहां नहीं नाचोगे तो माया नाचाएगी, नाचो गाओ, पसीना चू जाए कम से कम दो चार लीटर, तब विकार खत्म होगा। नहीं तो केवल माला जप, माला होगा जप नहीं होगा, माला गिनोगे, माला गिनने से कुछ फायदा नहीं, जप करना। तो चैतन्य महाप्रभु सिंपल फॉर्मूला दिए, नाचना और गाना। प्रभुपाद जी बुढ़ापे में भी नाचे गए, और नचाए. नाचना गाना बहुत जरूरी है. जब नाचेंगे गाएंगे तो अपने आप जितना भी विकार है क्लियर होता जाएगा, अपराध भी नहीं होगा, आनंद आएगा. केवल आनंद कंद, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो केवल आनंद कंद है. आनंद ही आनंद है कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन कृष्ण भावना में. ठीक है, आए? प्रेम, क्योंकि हम नाचने गाने से प्रेम बढ़ेगा. हम नाचते गाते नहीं हैं, तकलीफ यही है. इतना माइक दो, माइक माइक दो. देखो आपसे लोग कितना प्रेम करते हैं, माइक ले समझना शुरू करते हैं.
हरे कृष्ण. स्वर्ग का रंभा की उर्वशी मेनका आएगा, यहाँ पर डांस करेगा तो सब डांस करते. कोई अलग भक्त जो गाते क्या बजाते सो भाग जाते, क्यों?
क्योंकि उनको भगवान के नाम में प्रेम नहीं है. प्रेम नाम में होना चाहिए, वाद्य में नहीं, नाम में. नाम में प्रेम होना चाहिए. और सब जो बजाने वाला है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए बजा रहा है, गाने वाला भगवान की प्रसन्नता के लिए. अपने दिखाने के लिए मत गाओ, भगवान प्रसन्नता के लिए. और यदि भगवान के प्रसन्नता के लिए गाएंगे हम तो अपने आप प्रेम आएगा. दिखाने के लिए, फेमस बनने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए गाएंगे, बम गया काम से. ये जज हमको अपने से करना है कि हम किसके लिए कर रहे हैं. चाहे मृदंग बजाना हुआ, चाहे करताल बजाना हुआ, चाहे गाना हुआ, किसी को लुभाने के लिए कि कृष्ण को लुभाने के लिए. और सूरदास का एक कविता है ना, हाथ छुड़ायो जात है निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे सबल जानो मैं तोय. तो हृदय में कृष्ण को अपना लो, जो भी करो मन में चेतना में अपना लो, कृष्ण के लिए गाओ. जो भी करो प्रार्थना करके, प्रभु आप प्रसन्न हो, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए गा रहा हूं, तब देखो लोग प्रेम करेंगे. प्रभु पाई सब लोग प्रेम किए, चैतन्य महाप्रभु सब लोग, षट गोस्वामी सब लोग प्रेम किए, नारद से हिरण्यकश्यप और रावण भी प्रेम करते थे. तो भक्त ही एक ऐसा है ये सब प्राणी प्रेम करते हैं. हरिदास ठाकुर जब कर रहे थे और वहां एक कोबरा सांप था, पैथान था, जो भी था, बहुत बड़ा विशाल काय सांप था, भक्त लोग डरते थे. वो सांप भी समझ गया और चला गया वहां से. तो जो भगवान से प्रेम करता है संसार के सब प्राणी उससे प्रेम करते हैं. तो ये नाचना गाना ये कोई साइंस नहीं है, ये ग्रेटेस्ट साइंस है, कृष्ण प्रेम का साइंस है. हम में भी आएगा वो आनंद, और वही आनंद दूसरों में आनंद संचारित करेगा. हमने जब सब भक्त लोग नाचते हैं, तरह तरह मंदिर नाच रहा है, कितना अच्छा लगता है. यहां 100 भक्त लोग नाचे एक साथ में और गाए तो ऐसा, अभी तो नाचते गाते नहीं तो खड़े थे, सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहे, मंगला आरती गुरु पूजा समय सोचते रहते हैं. तो नाचना गाना जरूरी है.
और सेकंड क्वेश्चन है, जो इंद्र अपराध करते हैं तो अपराध से मुक्ति मिल जाते हैं ना इंद्र को, लेकिन जो भक्त अपराध करेगा भक्त को अपराध से कैसा मुक्ति मिलेगा?
भक्त अपराध करेगा तो जिसके प्रति अपराध किया है जैसे क्षमा मांगो, जैसे दुर्वासा जी गए अमरीश महाराज क्षमा मांगे. और भक्त लोग बड़े दयालु होते हैं, कृपा सिंधु होते हैं, तुरंत क्षमा करते हैं.
ठीक है, जो भक्त दो प्रकार रहते हैं, एक गृहस्थ भक्त है और एक
भक्त एक प्रकार के होते हैं. भक्त अनेक नहीं होते, एक होते हैं. भक्त मतलब जो भगवान का सेवा करता है, जो भगवान का सेवा करता है वो भक्त है. चाहे गृह थाको बने थाको सदा हरियो, कोई भी हो. ठीक है, यस, माइक अब दे दो उधर पीछे.
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा. प्रभु जी आपने प्रकाश डाला कि भक्तों का अपने सीनियर से गुरु जी वो लोगों के प्रति दंडवत प्रणाम या कैसा व्यवहार होना चाहिए, पर मैं कभी कभी देखता हूं कि कुछ सीनियर भक्त डिवोटीज का यदि हम जैसे मूढ़ अनपढ़ गंवार या छोटे व्यक्तियों से कोई हम वो हमसे मामूली त्रुटि हो जाती है तो उनका जो व्यवहार होता है हमारे प्रति बहुत ही निकृष्टतम दर्जे का होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या भक्त बनकर व्यवहार बहुत जो व्यक्ति होता है भगवान का भक्त होने पर उसका व्यवहार बहुत ही दम्भी घमंडी या अभिमानी हो जाता है अथवा स्वाभिमानी बहुत ही वो अच्छा होना चाहिए। अर्थात एक भक्त का व्यवहार हम जैसे बहुत ही मामूली व्यक्ति के प्रति मार्गदर्शक का स्वाभिमानी और बहुत अच्छा होना चाहिए या कैसा व्यवहार होना चाहिए? हरे कृष्ण।
पहला नंबर तो आप राजधानी एक्सप्रेस से चल रहे थे तो मुझे समझने में थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन जितना मैं समझा उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि भक्त के कई एक गुण होते हैं, उसमें से एक गुण है गंभीरता। भक्त को गंभीर होना चाहिए, गंभीर समझ रहे हैं ना, इसका मतलब नहीं अभिमानी, गंभीर, सीरियस, व्यर्थ का बात न करें, समय का अपव्यय न करें, टाइम मैनेजमेंट जो फर्स्ट क्लास से जानता हो भक्त, जो 24 आवर ए डे उसका काम है भगवान का सेवा करना, चाहे मन से चिंतन करता हो, शरीर सेवा करता हो, वाणी से कथा सुन करके दर्शन कर करके कैसे भी हमेशा कृष्ण में उसका मन लगा रहे, तो भक्त गंभीर होते हैं। इसका मतलब नहीं समझे भक्त बड़े अहंकारी हैं, बात नहीं करते हैं, जरूर बात करेंगे, आप जाएं उनसे बात करें, जरूर बात करेंगे, ऐसा बात नहीं बात नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग, आपके प्रश्न को मैं आगे बढ़ाता हूं, आपके प्रश्न का जो समझा उसका मैं उत्तर ही दे दिया कि भक्त लोग गंभीर होते हैं इसलिए ऐसा दिखाई पड़ता होगा, जैसे गहरा पानी होता है शांत रहता है और जो कम पानी होता है छिछला रहता है, पानी बुम निकलता रहता है, तो गहरा पानी शांत होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं शांत रहते हैं, व्यर्थ जाकर बकवास नहीं करते रहते हैं। कभी कभी प्रश्न करते हैं भक्त लोग कि हम तो सीनियर भक्तों को प्रणाम करते हैं लेकिन हमारे देखते भी नहीं है, हरे कृष्ण भी नहीं बोलते हैं, इसलिए मन नहीं करता प्रणाम करने के लिए, ऐसा प्रश्न आता है। देखिए दोनों का कर्तव्य है, सीनियर आपको करे एक्नॉलेज करे या ना करे, आप अपना काम करो, सब लोगों को अपना काम करना चाहिए, सीनियर का भी अपना काम है, जूनियर का भी अपना काम है। सीनियर जूनियर ऐसे देखा जाए केवल एक तारतम्यता है यहां पर व्यवस्था के लिए, लेकिन भक्ति में कोई सीनियर जूनियर नहीं है, क्योंकि सब लोग भगवान का ही नाम ले रहे हैं, भगवान श्री राम, जो जितना सेवा करता है वो जानते ना, चींटी बेचारी बालू डालती थी और हनुमान जी बड़ा बड़ा पत्थर, तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी बहुत सीनियर थे चींटी जूनियर थी, हां व्यवस्था में जरूर थे लेकिन भगवान की दृष्टि में ए यथा माम प्रबुदंते तथैव भजामि हम, जिस भाव से जो सेवा करता है भगवान समझते हैं, भगवान सबके दिल में है। एक जूनियर भी शुद्ध भक्त हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसको 20 साल रहना पड़ेगा तभी शुद्ध भक्त बनेगा, इमीडिएट बन सकता है, सिंसियर डिजायर होना चाहिए भगवान का सेवा करने के लिए। एनीवे तो सब लोगों को, हम लोगों को चाहिए अपना अपना धर्म निभाना, यदि दूसरे पर एक अंगुली डालेंगे तो तीन अपने तरफ है, ये नहीं बोलना चाहिए, तो हम लोगों को अपना धर्म निभाना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा, कोई प्रश्न? भगवद गीता क्लास दे रहे हैं, भगवद गीता क्लास दे रहे हैं, कोई गुरु आचार्य आ गए तो वहां पे क्लास में उनको कैसा सम्मान करना चाहिए, उत्तर के प्रणाम करेंगे ना व्यासन बैठ के हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए? कोई गुरु महाराज आ गए और क्लास दे रहे हैं तो उनको कैसा सम्मान देना चाहिए?
देखिए जो व्यासासन पर बैठा है वो व्यास देव का प्रतिनिधि है। लास्ट टाइम भी बात हो रहा था कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए, मंदिर खुलता है तो भक्त लोग कथा सुने कि प्रणाम करें, मैं उत्तर दिया था लास्ट टाइम, ठीक वैसे ही गुरु आ जाए, सीनियर वैष्णव हो जाए, कोई आ जाए, आपका संबंध जो है भागवत से है, जो व्यासन बैठा उसका एक ही काम है और वह काम है कृष्ण को देना, कृष्ण को दे रहे हैं, और जब ऑडियंस और वक्ता के बीच में जो वार्ता हो रही है, कोई सीनियर वैष्णव आ जाए, गुरु वर्ग आ जाए, तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए शास्त्र के अनुसार तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु वही है जो लोगों को कृष्ण को बताए, और जो आसन पर बैठा है वो भी कृष्ण को ही बता रहा है, तो दोनों के काम में कोई अंतर नहीं है। दोनों का एक ही काम है, कृष्ण भक्ति का प्रचार। यही है भगवान का मिशन, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चिदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। धर्म की स्थापना वो कर रहा है, तो टेक्निकली देखा जाए तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आप लास्ट टाइम क्लास में ही थे, इसका उत्तर मैं दिया था कि वो महर्षि सूत्र पात्र ही नहीं थे कथा कहने का, नहीं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ये प्रवचन दे रहे थे राधा कुंड पर, ये मंदिर खुला सब भक्त दर्शन करने चले गए, दर्शन करके आए तो उन्होंने पूछा, सो यू फिनिश योर आई एक्सरसाइज, भगवान का दर्शन करने गए थे। जैसे बलराम जी भगवान है, भगवान भी है, तो भक्ति सिद्धांत जी सिद्धांत बतलाए हैं यहां पर। मैं कहता हूं कि कर सकते हैं, मैं नाम ही बोलता हूं, कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जरूरत भी नहीं है, करना है कर सकता है, कितने लोग दौड़ करके प्रणाम कर लेंगे, लेकिन जरूरत भी नहीं है, दिल में प्रणाम कर लो। जैसे भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को दिल में प्रणाम किया, लेकिन समझे नहीं, दूसरा बात था, दिल में कर सकते हो। मैं गुरु किसे कहते हैं, ये भाया मीडिया है, ये चश्मा है ना, ये पढ़ने का तरीका है, यदि हमें आंख से दिखाई पड़े तो जरूरत क्या है, जब आंख से दिखाई पड़ रहा है फिर भी चश्मा पहने रहो, ये किस लिए, फैशन के लिए। तो गुरु जो प्रवचन कर रहा है वो कृष्ण से लोगों को संबंध स्थापित कर, भागवत से पहला नंबर, तो व्यास देव का एक गद्दी है, इसे व्यास आसन कहा जाता है, गुरु आसन नहीं कहा जाता है, प्रवचन आसन नहीं कहा जाता है, व्यास आसन। सम्मान हम करते हैं, बैठने से पहले प्रणाम करते हैं इस आसन को, तब बैठते हैं। जैसे शास्त्र में कहा गया है कि जो राजा होता है उसे खड़ा नहीं होना चाहिए कोई आए तो, लेकिन जब श्रेष्ठ आता है तो एडिकेट कहता है खड़ा हो जाना चाहिए, एडिकेट कहता है खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र आते थे जब अपने गुरुजी कौन द्रोणाचार्य या सम्मान करते थे, लेकिन शास्त्र कहता है कि राजा खड़ा होने की जरूरत नहीं है, फिर एडिकेट कहता है, तो कभी कभी एडिकेट सुपरसीड कर लेता है। तो मैं कहता हूं अपराध भी नहीं है, कोई खराब भी नहीं है, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है।
प्रभु हरे कृष्णा, कभी कभी ऐसा होता है कि गलती और अपराध और कोई भक्त करता है, लेकिन उसका गालियां हमको सुनना पड़ता है, उस टाइम क्या करना चाहिए प्रभु हमको?
आप उसको भक्त को थैंक यू बोलो, उसके प्रसाद खिलाओ, गोविंदा में फिश खिलाओ कि आपके चलते मुझे आज गाली सुननी पड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्यूरिफिकेशन है, आप पर कृपा हुआ, चिंता मत करो, वो प्यूरिफिकेशन है। गाली कोई देता है तो जब तक शरीर से लगाव है ना तो दुख लगता है, तो लगाव टेस्ट करता है कितना लगाव आपका है। आपका कर्म होगा, देयर मेनी वे टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कर्म थ्योरी एक है कर्म के अनुसार, और गुरु और वैष्णव यदि डांटते भी हैं तो आशीर्वाद समझना चाहिए।
हरे कृष्णा, तो मेरा ये प्रश्न है कि जो अनादर करते हैं वो अनादर करने से उनका क्या लाभ है, और जिसका अनादर होता है उसका अनादर क्या, बड़े का अनादर भी हुआ तो उनका क्या घाटा है?
ये तो लोडेड क्वेश्चन पूछ दिए हनुमान जी। अनादर करने वालों का क्या लाभ है और जिसका अनादर होता है उसका घाटा क्या होता है? यही प्रश्न है ना, यही प्रश्न है ना। सोचने दीजिए पहले। अनादर करने वाला का कुछ भी लाभ नहीं है, बल्कि जो है वो भी गया काम से, जो है वो भी गया काम से। और जिसका आप अनादर किए हो उसका कोई घटा नहीं हुआ, घटा आपको हुआ कि उसका ब्लेसिंग आपको नहीं मिला, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो दोनों रूप में लूजर हम ही हैं, अनादर करने वाले ही लूजर हैं दोनों रूप में। तो इसलिए आदर करें वो अच्छा है। माइक आपके पास है,
कमेंट एक।
हाँ बोलिए। हाँ, कमेंट हनुमान जी दे रहे हैं।
तो यह है कि जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर है, वे अपने आप जो कृष्ण के भक्त है उनका भी आदर करेंगे।
बिल्कुल सही।
और जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है उनका स्वाभाविक रूप से उनके भक्त के प्रति भी प्रेम होगा।
बिल्कुल सही।
इसे लव मी लव माय डॉग।
यस प्रभुपाद से रिपीट, लव मी डॉग। वेरी गुड। और कोई प्रश्न पूछ लो, नहीं तो क्लास के बाद यहां आकर बैठते पूछते हैं। लास्ट टाइम एक लड़का पूछा, बड़ा अच्छा, पता नहीं वो है कि नहीं, बोला कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, कृष्ण ही क्यों भगवान है, राम क्यों नहीं है, आप लोग कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं। अच्छा प्रश्न था उसका। तो मैंने उसे कहा कि क्योंकि कृष्ण ही भगवान है इसलिए भगवान कहते हैं। जब प्रभुपाद जी इस्कान का स्थापना किए तो उस समय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस नाम रखा। तो किसी मित्र ने सलाह दिया कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रखिए, कृष्ण तो हिंदू गॉड का नाम है। तो प्रभुपाद ने कहा कि गॉड मीन्स ऑल अट्रैक्टिव एंड कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, सो इफ एनी नेम कैन बी ऑफ गॉड दैट्स कृष्णा। तो कृष्ण ही भगवान का नाम है और कोई नाम नहीं, तो सबको अपने तरफ आकृष्ट करे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, अश्विनी कुमार ने जो घोड़े का हत्या किया उसको घोड़े का हत्या का पाप नहीं लगा, या फिर वापस उसे जिंदा कर दिया गया, मुझे मालूम नहीं।
ये कह रहे हैं कि अश्विनी कुमार ने जो घोड़े का हत्या किया तो घोड़े की हत्या का पाप नहीं लगा। देखिए, हायर चीज के लिए लोअर चीज को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। हमें जीव जीवस्य जीवनम, हम दूध पीते हैं कितने जीव उसमें हैं, चावल खाते हैं कितने जीव हैं। तो हायर काउज था, और वो हायर काउज क्या था, भागवत कथा सुनना। इसलिए कोई और किसी को मालूम है तो बताइए।
नहीं नहीं, दूसरा एक जिज्ञासा है, जैसे इंद्र के स्वभाव में बृहस्पति जी आए तो इंद्र राजा थे, इंद्र उठे नहीं तो उनके प्रजा भी उठे नहीं।
हाँ।
तो जिज्ञासा यह है कि अगर उस सभा में प्रजा के रूप में आप होते तो आप क्या करते
हैं?
उस सभा में प्रजा के रूप में आप होते तो आप क्या करते?
क्या क्या?
इंद्र के सभा में इंद्र जी उठे नहीं तो उनके प्रजा भी नहीं उठे, तो उनके प्रजा में अगर आप सम्मिलित होते तो आप क्या करते प्रभु जी? जिस जिज्ञासा है,
स्वाभाविक है कि उठ जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज भी जैसे हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, महाराज आते हैं तो हम उठते हैं, पहले अपना आसन थे हमारे बैठिए, चबरजी प्रभु जी करते हैं, ये स्वभाव है, करना चाहिए। कुछ एडिकेट हैं, जैसे उदाहरण के लिए खा रहे हैं, खाते समय सब लोग बैठकर खा रहे हैं पांच में, ठीक है ना, यदि एक आदमी उठ जाए तो सबको उठ जाना चाहिए, ये कुछ एडिकेट है। एक बार पुलस्य ऋषि गए भगवान शिव के पास, और भगवान नहीं, हां पार्वती जी के पास, कहे कि माता हम लोग बहुत भूखे हैं, सबको आप खिलाती हो, हम लोगों को कभी बुलाती नहीं हो। तो पार्वती जी तो माता है, खाने खिलाने में, खिलाने में, खाने में, खिलाने में स्त्रियां बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, बड़े दिल से खिलाती हैं। तो उसने कहा ठीक है आप लोग आ जाना, कब आना चाहते हो? तो प्लस दी अपने बहुत शिष्यों को लेकर के आने वाले थे खाने के लिए, और पुलस्त्य जी खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, कोई उनका पेट नहीं भर सकता है। जैसे अगस्त जी पानी पीने में बड़े एक्सपर्ट हैं, समुद्र के समुद्र पी डालेंगे, वैसे ही पुलस्त्य जी खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। हनुमान जी से भी उनका टंका बड़ा है खाने के लिए, इनका तो केवल पानी पीने का है, वो खाने वाले हैं। तो भगवान शिव जब सुने कि पुलस्त्य जी आने वाले खाने के लिए, तो समझ गए कि पार्वती खिला नहीं पाएंगी और बड़ा अपमान होगा। तो उनको पसीना चूने लगा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। भागते भागते द्वारिका आए और भगवान से प्रार्थना किए। तो पुलस्त्य जी को आमंत्रित की थी पार्वती जी और कृष्ण को आमंत्रित किए थे भगवान शिव। तो कृष्ण कहे मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब पहले ऋषि लोग आए, सबका पाप, पुलस्त्य जी सबसे लास्ट में बैठे थे। पांच चलाने का नियम है कि शुरू करो यहां से और लास्ट में जो भी बचा खुचा है वहीं डाल दो, वो बाल्टी में लेकर के मत आओ, वहीं डाल दो। ब्रह्मचारी आश्रम में से मत करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं डाल दो सब कुछ। तो पुलस्त्य जी सबसे लास्ट में बैठे थे। बाद में भगवान कृष्ण आए और वो आकर के पुलस्त्य जी के बगल में बैठ गए। पुलस्त्य ने कहा कृष्ण इधर नहीं, उधर जाओ, ये मेरा जगह है, तुम आगे जाओ, तुम्हारा आग्रह पूजा होती आगे रहो। कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप ही लास्ट में हैं, मुझे यहां बैठने दीजिए। समझौता हो गई। जब लोग डालने आते थे पुलस्त्य के पास, कहे मुझे पहले नहीं, पहले उसको डालो, बाद में मुझे, मैं लास्ट वाला हूं। ऐसे चल रही थी। अब सब लोग खा लिए, सबका पेट भर गया, लेकिन पुलस्त्य अभी खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और भगवान शिव को बेचारे को पसीना चू रहा है, देख रहे हैं कृष्ण की तरफ, अब क्या होगा। कृष्ण भी कुछ नहीं कर रहे हैं कि अब क्या होगा। तो कृष्ण चारों तरफ देखे और फिर कृष्ण खड़ा हो गए। जैसे ही कृष्ण खड़ा हो गए, सब खड़ा हुए, तो पुलस्त्य को भी खड़ा होना पड़ा। अब नहीं खा सकते हैं, कब खड़ा होना पड़ा। तो कृष्ण पर कोई श्राप लगता नहीं, उन पर कोई श्राप भी नहीं, तो भी एवं अस्तु, ठीक है। कृष्ण का श्राप भी, कृष्ण को कोई श्राप दे तो भी ठीक है, और आशीर्वाद दे तो भी ठीक है, माला डाले तो भी ठीक है, कुछ भी करो। कृष्ण को कोई गाली दे तो भी ठीक है, उसको मुक्ति मिल जाती है, गाली देने वाले को भी। शिशुपाल को देखो, मुक्ति मिल गई। तो कृष्ण पर ऐसा नहीं लगता है। तो ये थे पुलस्त्य, हैं नहीं, पुलस्त्य थे अगस्त, पानी पीने में एक्सपर्ट हैं, खाने में एक्सपर्ट पुलस्त्य हैं।
कहीं एक कथा में ये भी आपने जो बताया, मैं कहीं सुन रहा था, याद नहीं है। तो पुलस्त्य ऋषि जी तो प्रसाद बहुत खाए पर उनको पानी नहीं मिला था। तो बाद में भगवान कृष्ण बोले मैं भी तुम्हारा पानी का प्यास भी पूरी कर दूंगा। तो जब गोवर्धन को उन्होंने धारण किया था और बहुत वर्षा हुई थी, तो उस जल को मैं भी पुलस्त्य जी खा गए, ऐसा मैं सुना, कहीं श्योर नहीं,
पता नहीं। मैं एक बात कह रहा था एडिकेट का। एडिकेट है कि जब पांच में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, एक आदमी उठ गया तो सब लोगों को उठ जाना चाहिए। मैं एडिकेट की बात कर रहा था, आचरण।
हरे कृष्णा,
अभी बाकी है।
नहीं,
बोल लो, बोल
लो। टाइम हो गया तो बंद कर दो फिर नेक्स्ट।
ना ना, बोल दो बोल दो, मैं सपना आएगा तुमको।
श्रीमद् भागवत, हम जो लिखते हैं श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवतम, ये दोनों का मध्य में तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवतम, इसके दोनों का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है?
बलदेव उत्तर दे दो। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवतम एक आए? ये संस्कृत में एक है कि हिंदी में, मोटा मोटी समझा दिया है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो हिंदी में है और श्रीमद् भागवतम संस्कृत में, लेकिन फिर वो अपना संस्कृत आचार्य बैठा है बताएगा।
आप सही बोले, श्रीमद् भागवतम है वो नपुंसक लिंग शब्द है, जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है, और बाकी हिंदी में हो और किसी भाषाओं में वो मां हट जाता है, इसलिए श्रीमद् भागवत बोलते हैं। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, केवल भाषा का अंतर है।
समझ गए? और कोई प्रश्न? All right, so let's stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.